ઢોઢવાળા ઢોઢવાળા નું જો ગીતા પાસે ને
કાલવાડ
રોડ જયપુર
15-20 કિલોમીટર આગે
અઢાર કિલોમીટર આગે ગાંવ કાલવાડ એ નહીં કાલવાડ રોડ રોડ હૈ રોડ સે ગીતા પાઠશાળા વો મેન ચોટવાડા મેં આતી હૈ એ બીચ મેં પડ જતા ગુલામ માતા ગુલાબ માતા હા ગુલાબ શ્યામ સુંદર ભાઈ ઇનકે લડકે હૈ ઇનકે લડકે હા હા
મવર લાલજી બહાર સે કોઈ નહીં આ રહા કોઈ આતે નહીં અભી હૈ ધૂની રમાઈ પડે હૈ કોઈ આયે ના આયે લેકિન ધૂની તો રમ રહી હૈ મોહલ્લે વાલે કી સર્વિસ નહીં હો રહી ઇસકા મતલબ સંતોષ માતા કોણ હૈ અચ્છા અચ્છા સંતોષ માતા આતી હૈ કભી કભી બહાર સે હા બહુ હૈ અચ્છા ઓર સંગઠન ક્લાસ ભી નહીં હોતા કભી
થોડા સા આઉટ પડ જાતા હૈ ના થોડા દૂર પડ જાતા હૈ તો ઉધર ફેસ ક્યા કઈ માતા બસ્તી બદલને ચેન્જ હતી બદલે
ફિક્સ
કરતી પાઠશાળા પાઠશાળા લેકિન ટોટલ ચાર તો જોટવાડા મેં એક મહાવીર નગર એક છ હૈ બાબા વૈસે
છ ગીતા પાઠશાલા
એક મહાવીર નગર એક ઇમલી કે પાઠક ઓર ચાર યહાં પે ચાર
સાત ગીતા પાર્સલ ચાર ઇધર હો ગઈ ચાર તીન સાત ગીતા પાઠશાલા હૈ
સંગઠન ક્લાસ બાબા એસા હૈ કે ડેર કે વાલા જી દીપુ ભાઈ ઓર ઇનકી માતા જી હૈ સુમિત્રા માતા ઇનકે યહાં પે હો જાતા ક્યોંકિ વો સબકે સેન્ટર પર પાસ પડતા
હૈ સબ પહોંચ
જાયેગા ઇસલિયે તીન તીન તો તીન જો સંડે હોતે ના મહિને કે ફર્સ્ટ વો વહાં કર લેતે ઇધર વાલે તો મહિને કા જો બડા હોતા હૈ ઉસમે ફિર ઇમલી કે ફાટક યા એસે કિસી ગીતા પાઠશાળા પર ડિસાઇડ કર લે ક્યોંકિ પૂરા જયપુર બડા હૈ તો ઉધર વાલે હર સંડે ઇધર નહીં આ સકતે ઇધર વાલે ઉધર નહીં જા સકતે એટલે તીન સંડે તો દો ટુકડો મેં કરતા હૈ
ચલો સબને જૈસા પાસ કિયા વોહી અચ્છા
સબ માતાઓ કો ભી પરેશાન હૈ બસો મેં આને જાને કી
માનસરો હોય નહીં
જી દેખા માફી યહાં તો હોય નહીં આશા માતા જી
ગીતા પાઠશાલા ચાલ રહી
હા દેખ હા જી ચાલ રહી
હૈ
ક્યાં થોડી દલે તો પરચે ઇસ
ચક્કર આયે તો
ઉપર ટેન્ટ લગા કર સકતે હૈ આશા માતા
કી આશા માતા કી
સબસે લાસ્ટ વાલા મહાવીર સ્વામી ઇસસે પહેલે જો 23 તીર્થંકર હુએ તો વો ત્રેતા સતી દિન હુઈ હૈ
हिंदुओं में भी 24 अवतार माने जाते हैं है? और जैनियों में भी 24 अवतार माने जाते हैं। अब भगवान को 24 बार जन्म लेने की दरकार है? है?
वो नहीं। लेकिन जैसे जैन धर्म में तो
आप ये बताइए, भगवान को 24 बार जन्म लेने की दरकार है? नहीं, न हिंदुओं की मान्यता सही है और न जैनियों की मान्यता सही है। वास्तव में जैन धर्म भी कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर होता तो बाबा ने झाड़ के चित्र में जैसे बौद्धियों को अलग से दिखाया, ऐसे जैन धर्म को अलग से क्यों नहीं दिखाया? दिखाया? नहीं दिखाया। इससे साबित होता है कि जिन्होंने इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ किया वो जिन कहे गए, जिनेन्द्र स्वामी, और उनको जिन्होंने फॉलो किया वो फॉलोअर्स कहे गए जैन। क्या? जैसे ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण, जैसे विष्णु विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, एक मात्रा बड़ी ना, ऐसे ही जिन के फॉलोअर जैन। तो जिनेन्द्र स्वामी के रूप से जिन्होंने इंद्रियों को जीता वो एक ही हुआ है और उसको नंगन रूप में दिखाया जाता है। हिंदुओं ने उसको शंकर के नाम रूप दे दिया है और जैनियों ने उनको तीर्थंकर नाम रूप दे दिया है। निराकारी स्टेज है, इसलिए नंगा कैसे, आत्मा को नंगा कैसे दिखाएं? हैं? देह को भूल गए निराकारियों? गुरु नानक हैं, क्राइस्ट हैं, महात्मा बुद्ध हैं, इनकी कैसी स्टेज दिखाएगी? निराकारी स्टेज दिखाएगी, माने देह का ध्यान है ही नहीं, देह से जैसे उपराम हो गए। तो एक ही भगवान का रूप है जो इंद्रियों को संपूर्ण से रूप से जीत लेता है, और जो उसने इंद्रियों को संपूर्ण रूप से जीत लिया उसको दिखाया जाता है संसार में जिनेन्द्र स्वामी के रूप में। अब हिंदुओं ने जैसे 24 अवतार बनाए दिए, वैसे जैनियों ने भी 24 अवतार बनाए दिए। अब ऐसे नहीं है कि युगों युगों में भगवान का जन्म होता रहता है, नहीं, वो तो सिर्फ कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के टाइम पर, जबकि नई दुनिया बननी होती है तभी भगवान आकर के इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ देवी देवता आत्माओं को सिखाते हैं। तो वो सभी जैन हैं जिन्होंने जिनको फॉलो किया, इसलिए झाड़ के चित्र में जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया गया। इसलिए बाबा कहते हैं ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वहां तो जड़ मूर्ति रखी हुई है, वहां तपस्या में बैठे हुए जड़ मूर्तियों में दिखाए गए हैं, हैं? और यहां देखो तुम चैतन्य में बैठे हो, वहीं तुम चैतन्य में बैठे हुए हो जहां दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। तो बेसिक नॉलेज वालों के लिए ये बात लागू भी नहीं होती, क्योंकि दिलवाड़ा मंदिर में वहां कोई दिलवाड़ा के एरिया में वो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई बैठे हुए नहीं है तपस्या में। ये एडवांस वाले हैं जो दिलवाड़ा मंदिर सारा खरीद लिया, बैठ गए और बैठ करके प्लान बना रहे हैं कि यहां बैठकर हम तपस्या करेंगे, दुनिया का विनाश होता रहेगा, एटम बम फटते रहेंगे और हम मस्ती से यहां बाबा को याद करते रहेंगे। है? कब बैठेंगे? जब तुम ये मेहलमानियां बनाना छोड़ोगे। अरे तो धड़ाधड़ बनाते चले जा रहे हैं, है? जब यहां बनाते चले जा रहे हो तो दिद्या यहां लगी हुई है, लगाओ यहां लगा हुआ है या वहां लगा हुआ है? है? वो तो कुछ कोई ऐसा अजूबा गरूबा ड्रामा में नुदा हुआ है कि ऐसा कुछ ड्रामा में होगा और जबरन छोड़ करके भागेंगे। ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا تو ایسے کوئی تھوڑا ہی کوئی چھوڑ چھوڑ کے بھاگنا چاہتا تھا. استھتی ایسی بن گئی چھوڑ چھوڑ کے بھاگے. یہ کہ آدمی بھی کنیاؤں ماتاؤں کو سات سات تالوں کے اندر بند کر کے رکھا گیا, کوئی چھوڑ رہا تھا نہیں چھوڑ رہا تھا, پھر کیا ہوا؟ پھر ایسا عجوبہ غروبہ ہوا, ایسی مار کاٹ ہوئی, اپنا لنگ لمیٹ سمیٹ کے جن کو بابا کے پاس بھاگنا تھا تو بھاگ گئی, ان کو موقع مل گیا. سات سات تالے لگانے والے گھر گھاٹ چھوڑ کر کے کہاں کے کہاں مارے مارے چلے گئے, ان کا آج تک پتا نہیں.
مسلمان مار ڈال اپنے شریر کے کارن سنکلپ چلتا ہے کہ میری اتنی اوستھا ہو گئی تو آگے میں دوڑ پاؤں گی. ماتا یہاں کراچی والی
نہیں آ گئی ہے وہ دیکھو وہ کون کوئن دادی کتنی بوڑھی تھی تو کراچی میں چلی گئی کہ نہیں چلی گئی اور کراچی سے انڈیا میں بھی آ گئی. تو یہ کوئی بات تھوڑا ہی ہے, یہ تو پورے جنموں کا حساب کتاب ہے. جس کو بچنا ہوگا بچ جائے گا, جس کو کٹنا مرنا ہوگا مسلمانوں کے ہاتھ سے کٹ مر مرے گا. حساب کتاب تو پورا کرنا پڑے گا. اور
بابا آج کل یہ بیسک چل رہے کہ بینر لگانے لگے ہیں برہم کماری کی شکریہ شکریہ ودیالیہ, جیسے اب وہ ہمارے پاس نہیں ہے جگہ ہمارے پاس نہیں چل رہا تو وہاں جیسے ہم اگر بینر لگانا چاہتا ہوں کس نام سے جیسے بابا کے نام سے کہ پرجاپتا ایشوریہ وشو ودیالیہ لگا سکتے ہیں کیا گیتا پاٹھ شالا؟
آپ کو تو منع کر دیا ہے آؤ تو بابا نے کہا تم وہ شبد ہٹا دو پرجاپتا برہما کماری تم کیا لگاؤ آدھیاتمک ایشور وشو ودیالیہ. کہاں لگا لے ہوگا بینر؟ گیتا پاٹھشالا میں لکھو آدھیاتمک سچی گیتا پاٹھشالا. بینر لگانے سے کیا ہوگا؟ اسٹوڈینٹ کی سنکھیا بڑھاؤ سیوا کر کے تو فائدہ ہوگا.
کیا ہے کہ کئی لوگ تو کئی ماتا ایسے کہتی ہیں کہ آپ کی کلاس کہاں چلتی ہے ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا ہے. تو کیا جیسے کہ بیسک والوں کی چل رہی ہے معلوم پڑ جاتا ہوں جیسے ایڈوانس والوں کی بھی تو معلوم پڑ گئی ہیں.
ہاں تو وہ تو پردرشنی کرتے ہیں, وہ تو ہو ہلہ کرتے ہیں, کانفرنس کرتے ہیں, بڑے بڑے میلے لگاتے ہیں. تم یہ کرو گے تو پھر ہم تو ایک ایک کو بیٹھ کر کے سمجھاتے ہیں, جس کی سمجھ میں آ جائے وہ آئے گا. یہ سب دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت؟ بابا کہتے پہلے اپنے مستک پر بینر لگایا ہے کہ ہم براہمن ہیں. مستک کی روشنی دیکھ کر کے کسی کو پتا چل رہا ہے کہ یہ براہمن ہے. تو اس کو تین پیر پرتھوی کی جگہ نہیں ملے گی ہے؟
دو تین جگہ مل کر کے بھی زمین لے سکتے ہیں مکان.
بابا نے کب کہا کہ تم وہاں زمین خریدو ہی خریدو؟ ارے جن کے پاس فالتو پیسے پڑے ہوں وہ وہاں زمین خریدنے جا کے, جن کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا وہ پیسہ ڈالنے کا. گورنمنٹ فیل ہو جائے گی, کرنسی فیل ہو جائے گی, بینکیں فیل ہو جائیں گی, کمپنیاں فیل ہو رہی ہیں, تو پیسہ کہاں ڈالیں؟ سونا خرید کے ڈال دیں چور لوٹ لے جائیں گے, زمین ہلے گی پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. تو اس لیے اتنا تو پکا ہے کہ سو سال کا سنگم یوگ ہے 2036 تک تو آپ کی پراپرٹی استھر رہے گی نا, تو ایسی جگہ ڈالو. پھر وہ بات ان کے لیے ہے جن کے پاس اکوت پیسہ پڑا ہوا ہے, جن کے پاس روٹی دال کھانے کے لیے ہے. پہلے اپنے شریر کا پرسارتھ دیکھنا ہے نہ کہ پراپرٹی جمانی ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے کھانے پینے کا دیکھنا ہے. دو روٹی پیٹ میں ہوں گی تو پرسارتھ بھی ہوگا.
جمع بابا کے پاس وہ مولوی लिया, पाँच साल तक रिवाइज करने के लिए, पाँच पाँच साल बाद रिवाइज करने के कहा। ऐसे ही सड़सठ अड़सठ की मूर्तियाँ यहाँ रिवाइज हो रही है।
यहाँ तो पुराना माल ढूंढा जाता है, हाँ अड़सठ का पहले नहीं चलता था, एडवांस में अड़सठ की मूर्तियाँ मिली नहीं थी, अभी मिल गई है तो पुरानी चल रही है। आगे चल करके बाबा की मुख की निकाली हुई कैसेट की वाणी वो भी मिल जाएगी,
तो आगे चलकर ये ज्ञान रिवाइज होगा,
तो और रिवाइज बढ़िया होगा। सुन दो ना, सुन है ना, अभी डायरेक्ट मिल ही नहीं रहा है, है? फिर क्यों पूछ रही? पढ़ते हैं, पढ़ते कौन से बाबा पढ़ते हैं, वो कौन से बाबा पढ़ते हैं और कौन है? वो कौन से बाबा पढ़ते हैं और कौन से पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठा है? शिव बाबा पढ़ते हैं, सुनो शिव बाबा को पढ़ने की दरकार है? शिव बाबा को पढ़ने की दरकार है ही नहीं, वो आत्मा अलग अलग बुद्धि में बैठती नहीं है कि शिव आत्मा जिसको हम शिव नाम दिया है वो देह धारण करती नहीं है, देह में धरी नहीं रहती है, वो देह से परे रहती है, वो है समझाने वाली पढ़ाने वाली, और ब्रह्मा की सोल है पढ़ने वाली, राम वाली आत्मा तो अति तमो प्रधान, वो ना पढ़ने वाली है ना पढ़ाने वाला, तो याद में है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, कुछ करता है क्या? अरे कर्मेंद्रियों से काम किया जाता है, वो तो बैठे हैं, ये कोई काम है? है बाबा की याद कोई काम होता है? तो काम धाम तो कुछ नहीं, काम कर्मेंद्रियों से किया जाता है, तो कर्मेंद्रियों से कोई काम है ही नहीं, याद को कोई काम थोड़े ही कहेंगे, याद है अब उसे याद कर रहे हैं।
बाप समान बनते हैं,
हाँ हाँ, तो जो एक बनता है बाप समान वो सब थोड़े ही बन जाएंगे, है
बाबा
का, बाबा का बाप शिव बाबा नहीं मिल सकता है, शिव बाबा तो है ही सबका बाप, उसका बाप कोई नहीं।
अच्छा फिर वहाँ पर छूटेगा, दोनों का एक साथ छूटेगा,
दोनों माने किसका?
ना
ये किसने कहा कि यहाँ की युगल और पति पत्नी दोनों साथ साथ शरीर छोड़ेंगे? सत्यु को छोड़ेंगे, शरीर को क्या होगा? सागर बाहर ले जाएगा, है समुन्द्र, शरीर छोड़ने से पहले ही उन्हें पता, अभी तो बताया, पहले से ही पता चल जाएगा, जाएंगे समुन्द्र के किनारे घूमेंगे, वहीं से ही छोड़ दिया, समुन्द्र आके बाहर ले जाएगा, है जलाने भुनाने की तो जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ विकार ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहाँ जलाने भुलाने की क्या जरूरत है? सन्यासियों के शरीर जलाए जाते हैं या बहाए जाते हैं? है या तो वो समाधि लेते हैं या तो उनको जल समाधि लेते हैं, तो वो तो पवित्र रहते हैं, दुनिया समझती है कि ये पवित्र हैं, इसलिए इनको जलाने की दरकार नहीं है। जलाना तो जलाना करना तो रावण का होता है, जो बहुत दुख देता है, दुखदाई होता है, उसको जलाया जाता है। बाकी सत्युग में त्रेता में देवताएं किसी को दुख देते हैं क्या? है दुख देने की बात ही नहीं, जल समाधि ले लो। और गाड़ देते हैं मिट्टी में, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो यहाँ संगम युग में देह अभिमानी की मिट्टी छोड़ पाते हैं। जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हों या मुसलमान धर्म की आत्माएं हों जन्म जन्मांतर की पक्की, वो देह अभिमान को छोड़ पाएंगी विनाश होने तक है। जब देह अभिमान की मिट्टी को छोड़ ही नहीं पाएंगी, देह अभिमान की मिट्टी की गड़े हैं तो मिट्टी में ही रहेंगे, देह अभिमान की मिट्टी से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। इसलिए वहां भक्ति मार्ग में भी उनकी परंपरा चल पड़ी, मरेंगे तो क्या करेंगे, देह अभिमान की मिट्टी में ही गड़ाएंगे, मिट्टी में गाड़ देते हैं उनको। तो मिट्टी में गाड़ना करना ये विधर्मी आत्माओं के लिए है। जो स्वधर्मी आत्माएं होती हैं वो देह अभिमान को जला देती है। देह अभिमान की मिट्टी में गढ़ करके नहीं रहना है उनको, क्या करना है, देह अभिमान को राख कर देंगे, जला देंगे, नाम निशान खत्म कर देंगे, तब देवता बनेंगे। अगर देवान रह जाएगा तो देवता कैसे बनेंगे। तो इसलिए परंपराएं पड़ी हुई हैं अपनी अपनी अलग अलग है। छोटे बच्चे निर्विकारी होते हैं या विकारी होते हैं, है? है? निर्विकारी होते हैं। और चेहरा मोड़ा कैसा दिखाई देगा, दिव्यता वाला दिखाई देगा। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अपनी अव्यक्त स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तो अव्यक्त चेहरा दिखाई देगा। जो व्यक्त चेहरा होता है और अव्यक्त चेहरा होता है, फरिश्ताई चेहरा होता है और फर्श की दुनिया को याद करने वालों का चेहरा होता है, उसमें अंतर नहीं होता है। जब आत्मा बने हैं तो आत्मा ही, आत्मा का बाप ही दिखाई देना चाहिए ना, दूसरा कोई क्यों दिखाई दे, अब दिखाई कहाँ दे, का सर्वव्यापी दिखाई दे,
है? बुद्धि से ही दिखाई दे।
ये नहीं पता मतलब है किससे दिखाई दे, लेकिन वो दिखाई कहाँ दे, स्थान कौन सा,
प्रकृति के बीच
में। कोई भी प्रकृति के बीच में दिखाई दे, भैंसा है उसकी प्रकृति के बीच में शिव ज्योति बिंदु दिखाई दे तो चलेगा, क्यों
बाबा आपका दिखाई दे तो फिर बाबा
को। आत्मा तो हम जानते हैं हमारी यहाँ पर है, लेकिन हमारी आत्मा यहाँ पर है, लेकिन शिव बाबा कहाँ पर है, शिव की आत्मा कहाँ पर है।
शिव बाबा ने रख लिया उस बीच में, देखेंगे तो याद आएगी ना आपको, जनजित रख में लिया है उसी में देखेंगे तब तो याद आएगी ना।
अच्छा अब वही तो बात है, ये बात बुद्धि में बैठी हुई हो ना कि वो रथ कौन सा है, हाँ वो साकार रथ कौन सा रथ है, ये बात बुद्धि में हमारी बैठी होगी तो उसकी निशानी है कि हम दूसरों को भी बैठा सकेंगे। जिनकी बुद्धि में खुद बैठी नहीं होगी तो दूसरों को भी नहीं बैठा सकेगा। जिसको खुद दिखाई देता होगा शिव ज्योति बिंदु, वो दूसरों को भी परिचय दे सकेगा कि ये शिव ज्योति बिंदु है, ये इसका नाम रूप है, ये इसकी आईडी है। आईडी बनाते हैं ना आजकल, क्या आईडी प्रूफ होता है ना, उसमें क्या दिखाते हैं, आईडी प्रूफ में फोटो दिखाते हैं, नाम दिखाते हैं, स्थान दिखाते हैं, एड्रेस दिखाते हैं, उम्र दिखाते हैं, क्वालिटी दिखाते हैं, सब दिखाते हैं ना। तो ऐसे ही शिव बाबा का पूरा प्रूफ जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वो दूसरों को दिखा सकेगा, खुद ही नहीं बैठा होगा तो पूछता रहेगा। फिर चेहरे में दो आंखें हैं, है ना, और तीसरी आंख कहाँ है? तो बस यही क्रम हो गया। रामकृष्ण दो आंखें हैं शिव बाबा की, और तीसरी आंख शिव बाबा की खुद है, इसलिए त्रिनेत्री कहा जाता है। क्रम का पता ही नहीं चला अभी तक है। अरे यही तो क्रम है त्रिनेत्री का है। उनकी पहचान ये है कि दो आंखें जो आसपास दिखाई गई हैं वो पड़ी हुई है, बीच में जो नेत्र है वो खड़ा हुआ है, माने जो बाबा सदैव स्मृति स्वरूप है वो स्मृति में सदैव खड़ा हुआ है, उसकी स्मृति कभी डाउन नहीं होती, और रामकृष्ण की स्मृति डाउन होती है, अप होती है, अप डाउन, जैसे हमारी तुम्हारी होती है उनकी भी होती है। और
भाई ओम शांति बदल के ओम नमः शिवाय हो गए, हो जाए तो अच्छा ही। सीडी में लिखा हुआ था पहले ओम शांति आता था, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय हो जाए तो बढ़िया है ना, खराब क्या है? है अगर नमन ही करना है तो शिव को ही नमन करना है, और किसी को नमन क्यों करें? और किसी को नमन करने का मतलब यह है कि दूसरों को बुद्धि झुकाना, दूसरों के सामने अगर हमने बुद्धि झुका दी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक की बात को कोई वजूद नहीं देते हैं, एक की बात को कोई महत्व नहीं देते हैं, सब के सामने झुक रहे हैं, माने सब शिव हम हैं, सब भगवान के रूप हैं। तो गलत करते हैं, प्रकृष्ट रूपेण नमन, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, नम माने नमन, तो सबके सामने प्रकृष्ट रूपेण नमन, ए क्या हुआ?
तो वो इसको बुरा मानते हैं कि देखो ये है ना कि आपको ए, मैं इनको झुकते नहीं है, झुकते जैसे प्रणाम नहीं करते।
अरे किसको झुके? किस तुम उनको समझाओ ना, जब वो करें तब उनको समझाओ कि नमन किसको करें। अरे तो समझा नहीं मानते, नहीं समझते तभी तो समझाना है उनको, समझाओ नमन किसको करें, जो हमको ऊंचा उठाए उसको हम नमन करें, जो सारी दुनिया को नीचे गिराते आए हैं, सारी दुनिया नीचे गिरती चली आई है, उनको नमन करने से फायदा?
तो छोटे बच्चों को भी ये नहीं सिखाया मतलब
क्या?
प्रणाम करो,
सबको प्रणाम करो,
करो तो जैसे लौकिक में कहते हैं भाई अच्छी आदतें सिखाओ।
क्या अच्छी आदत?
क्या
अच्छी आदत? सबके पांव
गिरते करो, ये अच्छी आदत है, सबके पांव काटते करो। अब ऐसे कहते ये ऐसे कहते वो ऐसे कहते, इसी में लगे रहेंगे या शिव बाबा कैसे कहते हैं सो भी सुनेंगे? सबसे पहले शिव बाबा को सुनेंगे, बाद में हम दूसरों की भी सुनेंगे। एक भाई क्या अरे लौकिक में बात को मान करके चलना है, जिस लौकिक को आग लगने वाली है या उस अलौकिक को मानना है जो अलौकिक दुनिया सामने खड़ी है। हमें मालूम है ये लौकिक दुनिया में आग लगने वाली है, भस्म होने वाली है, तो भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज ज्यादा रखी है, याद
बाबा जैसे अपने आप को ही आए तो उसको अगर अपन ओम शांति बोलते हैं तो कह रहे तुम ब्रह्म कुमारियों में से हो क्या?
हाँ नहीं ब्रह्म कुमारी में से
तो बोलते हैं क्या है ब्रह्म कुमारियों को
तो तुम जो अच्छा दुनिया को वो समझते हैं तो तुम पैंट कोट पहन के खड़ी हो जाओ लड़कियों की तरह आज के जैसे औरतें होती है ना आधा घुटन्ना पहन लो और आधा कोट पहन लो खड़े जाओ देख हम बहुत अच्छे हैं तो हमको बहुत अच्छा मानते हैं चश्मा लगा लो तो बहुत अच्छा समझेंगे हाँ पढ़ा लिखा आदमी है घर का पढ़े ऊंचे घर की औरत है
ओम नमः शिवाय करके लिखा था तो हमको ओम नमः शिवाय
गांव में इतनी लोकलाज क्यों आती है
रंगीन साड़ी पहन के जाते हैं ना रंगीन साड़ी पहन के जाते हैं कहीं भी सेवा में या जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे ब्रह्म कुमारी वाला ज्ञान है तो पर तुम है ना रंगीन कपड़े पहन के क्यों आते हो तुम सभी वस्त्र धारण करके आओ तुम्हें बोले हमारे गुर्गे परिवार में रहकर गृहस्थ के लिए आया है परमात्मा हमारे को सफेद साड़ी अलाउ नहीं है परिवार के तो कहते हैं तुम मतलब यही है कि तुम्हारा लेन देन ये सेवा तुम्हारे को तो ये जो ब्रह्म कुमारी लेन देन करती है
तुम्हारी तो आप बता नहीं सकते हम तो ब्रह्म कुमारी हैं हमसे बात भी नहीं करती हैं आप कैसे कहते हैं
कि हमने वो 35 साल पहले सुन लिया साधु संन्यासों के पास गए हम बहुत सर वो तो जाओ बाबा यहाँ से जाओ हाथ जोड़ के आप पका दिया बोले जाओ यहाँ से हमारे साधु संन्यासियों को ना भरमाओ ना यहाँ फिर भी मैंने बहुत कोशिश की बहुत बैठ कर सुनने की कोशिश की उनके उनको तैयार होके हो गए निकल पड़े
एक बात न बस देते ना कि सुने सब डालते देखे सुनना चाहे एक बार पूछेंगे तभी तो उनकी नब्ज पकड़ में आएगी सुनना ही नहीं चाहेंगे तो नब्ज कहाँ से पकड़ में आएगी
बाबा ने कहा 100 को संदेश देंगे तो एक निकलेगा 100 में 99 प्रजा हो गई और एक राजा बनेगा तो हम ऐसे ही करेंगे इसमें हर्जा क्या है अरे 100 को सुनाएंगे तो प्रजा तो हमारी बन गई हा? तो क्यों नहीं 100 को सुनाएं ये समझ के कोई सुनता ही नहीं कोई ध्यान नहीं देता कोई ये अरे नहीं देता है तो ना दे हमारा काम है बाबा का संदेश सबको देते रहना ना कोई सुनता है नहीं सुनता है आज नहीं सुनेगा कल सुनेगा
बाबा एक आत्मा है तो उसने ज्ञान तो बहुत लिया है सारा उसने जैसी में भी कभी भी उसको मुझे एडवांस का भी इसको सारा ज्ञान दिया किताबें भी पढ़ी उसको समझ भी आ गई लेकिन अब वो क्या काम कर रही है कि जो भी आता है उसको तोड़ देती है जैसे 16-17 जने आने लगे थे उन लोगों को रोक दिया सामने
रहती
वो देखती
रहती है तो बाबा ने तो बोल दिया कोई भगाने वाले कोई थमाने वाले कोई भगा देगा ज्ञान में से कोई थमा देगा तो आप थमाने का काम करो वो भगाने का काम करे बिच्छू का काम है डंक मारना उसका वही धर्म है आजी आजी इसका जो धर्म है उसको अपना धर्म को फॉलो करने दो मानसरोवर तो कई बार क्लास हो चुका है हाँ, आप लोग जहाँ आपस में तय करेंगे वहाँ हो जाएगा तो आप लोग हम थोड़े ही करते हैं तय कि कहाँ क्लास करना है ये तो आप लोगों को आपस में संगठन करते हैं संगठन में जाते हैं वहाँ क्लास तो वहाँ तय कर लो कि अगली बार बाबा आएंगे तो किसके यहाँ क्लास होगा बाबा से तो बाबा को तो बैठ कर क्लास कराने मतलब जहाँ सबकी सहमति अभी प्रजातंत्र राज्य है कि राजा का राज्य है प्रजातंत्र राज्य आपस में तय करो है हाँ बाबा तो सरेंडर होके आते हैं, जहाँ बिठाए जो खिलाए जो पिलाओ जो जहाँ ले जाए है, है?
बाबा माता जी नहीं निकली है ऐसे कह रही है, मेरे भी आएंगे क्या बाबा?
हाँ गीता पाठशाला खुलेगी तो क्यों नहीं आएंगे? तो सिंगल माताएं को घर में गीता पाठशाला नहीं होती क्या?
पूछो बाबा जी आप भी आपसे बात करना चाहती
हूँ,
बताओ जी जैसे कर दूंगी आप बताओ जैसे कहूंगी ऐसे
जैसे बताएंगे वैसे ही करेंगे। पूरे घर को ज्ञान में चलाओ हैं? है पूरा परिवार ज्ञान में चले, घर में गीता पाठशाला खोले, बाबा क्यों नहीं आएंगे? बाबा आते ही है गीता पाठशाला, और कहाँ जाएंगे? है आज जो गीता पाठशालाएं हैं कल वो मिनी मधुबन बन जाएंगे।
बाहर वालों को सुनाकर बाहर वालों तो आ जाते हैं, वो जो घर वाले परिवार वाले हैं वो कैसे पढ़ते हैं
इधर उधर खिलाने में? इसीलिए कि आपने सुन रखा है बाबा के मुंह से कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो आप तो निश्चिंत हो गए, इसलिए वो इधर उधर भागते रहते हैं, आप तो चिंता नहीं करते, भागने दो इधर उधर। हाँ बाबा ने तो कह ही दिया आज नहीं तो कल, वो तो चलेंगे ही, जाएंगे कहाँ?
बाबा मैं कह रहा था मैं और मेरी सिस्टर और मम्मी सभी वहाँ पे भर्ती कर चुके हैं, और उसके बाद मम्मी और सिस्टर हमारे बिहार चले गए।
अब बहुत
हाँ बिहार अब हो गए 6-7 महीने हो गए, होने आ रहे हैं अभी। अब आपका परिचय भी उससे मतलब नहीं मिलते, मैंने कितनी बार बताया भी आज हो जाए, तो क्या कह रहे हैं घर बन रहे अभी खेती हो रहे हैं, तो वो आ नहीं पाते, आने आपसे मिल पाते तो उसका क्या करें?
आप बुलाना चाहते हैं? हमको कोई आते नहीं है, है?
आने तो आ रहे हमें ले गए थे, आप पूछे भी थे, हम आपसे एक बार इमली फाटक आए थे, आपने मना किए थे हमको।
क्या मना किया?
आपने ये कहे थे आप जाओ गांव, आप मिल के आ जाओ, जब कोई बीमार है आप जाओ, आप मिल के आ जाओ, इन लोगों को यही छोड़ दिए ज्ञान। जब फिर भी आपके बाद में काट के मैं मम्मी को और बहन सबको ले गए गाँव, फिर वो क्या है वहीं रुक गए, और वहाँ रुकने के बाद दोबारा आए नहीं, तो
आप लेने गए दोबारा?
दोबारा गए।
अच्छा आप लेने गए फिर भी आए नहीं?
उन लोग आने के
तो बहुत मजबूत बच्ची कन्या है, एक इनकी माता है भर्ती कर ली इन्होंने 5वीं, बहुत लगन थी कन्याओं की इनकी मम्मी की, लेकिन ये गांव के लोग थी बंदर माता के, उनको वहाँ बिहार गांव छोड़े वही एड्रेस पिला दिया, वो बहुत तड़प रही है बच्चे बच्चियाँ इनकी मम्मी को।
तो गलती उनकी थोड़ी ही है, गलती तो आपकी, आप अपनी रचना को अपने आप नहीं संभालना चाहते, आप अपनी रचना को अपने आप नहीं संभालना चाहते, उनके ऊपर छोड़ दिया है, तो गलती किसकी है?
पिछले साल जो पिछली तीसरी साल बाढ़ आए थे हमारे गांव में उधर, तो बाढ़ से पूरे हमारे घर पूरे मतलब बह गए थे पानी। तो मम्मी सबको हम इधर ले आए, अब पापा गांव में रुक गए, मम्मी को बहन को मैं इधर ले आए बिहार से यहाँ जयपुर ले आए, पापा वहाँ रुक गए, तो फिर मैं यहाँ से पापा बुलाए हम सबको, तो भाई आ जाओ एक साल के बाद आ जाओ वहाँ पे घर बन गए, हम गए वहाँ पे घर पे गए, तो फिर पापा आने नहीं दिया दोबारा, बोला भी नहीं मैं नहीं जाऊँगा अभी, अभी बस यही रहेंगे सब, बस पापा ने आने दिया यही, बस
ज्ञान में नहीं है
पापा, ज्ञान में नहीं है
ज्ञान की ज्ञान।
अब पापा को मैंने ज्ञान भी बहुत सुनाए अपने, और मुझे भी सुनाए थे, किताबें भी पढ़ी थी पापा को,
तो चिंता क्यों करते है? इतनी बात जब बाबा ने बोल दिया तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, बाकी तुम अपनी रचना की चिंता करो, उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं?
कुमारे तो बहन और मम्मी के लिए,
बहन और
माँ के लिए, मम्मी है बहन है तीन, तो कुमार है
सभी बहनें, लोकी माता जी ने भट्टी कर ली थी, माता जी
माँ बाप के चला
सभी पिताजी ज्ञान में
चलते, माँ चलती है,
माँ चलती है, बहन चलने
अपने लगन
को दादी अपने कंट्रोल में रखते हैं, नहीं चलने देंगे तो ये क्या करेंगे?
मैं चाहता हूँ एक बार और गांव जाऊँ और पापा को भी मम्मी को भी सबको ही मिल जाए, फिर यहाँ से एक बार भर्ती करा दे पापा को मम्मी को दोबारा से सबको
जबरदस्ती पकड़ के भर्ती करा,
जबरदस्ती नहीं बस बहुत एक बार तो उन्होंने बोले थे ठीक है आऊंगा जयपुर, जयपुर आ गए थे एक बार यहाँ पे क्लास व्लास में बैठेंगे जब सभी से मिलेंगे सेकेंड क्लास में ऐसे रोज के क्लास सुनेंगे तो उनका भी थोड़ा सा अपने बदलाव आ जाएंगे, तो एक बार भर्ती करा देंगे उसके बाद तो फिर कहेंगे बिहार रहो कहीं रहो वहीं पे क्लास व्लास चालू करते हैं, ये बस सोच रहे
सन 18 में जो प्रतिष्ठा होगी आपकी तो एकदम सारी दुनिया में तेजी से फैली गई है, पहले बीके वाले मानेंगे धीरे धीरे प्रतिष्ठा होगी,
बच्चा जन्म लेता है तो पहले सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाता है, पहले घर में जो मुख्य मुख्य होते हैं उनको पता चलता है,
कहते होगा कि बेसिक वाले
को पता चलता है, बाप को पता चलता है, घर वालों को पता चलता है, फिर मोहल्ले वालों को पता चलता है, फिर और दुनिया में पता चलता है,
जब बाजे गाजे बजाए जाते हैं तब सबको पता चलता है, तो ऐसे यहाँ भी जब बाजे गाजे जोर से बजेंगे तो सबके कान खोलेंगे है? है?
तो ये भी बोला ना बेसिक वाले बाहर की दुनिया वाले गुरुओं से मिल जाएंगे सब एक हो जाएंगे,
अच्छी बात है,
एडवांस वाले अलग हो जाएंगे,
पता कैसे चलेगा
कि ये पावरफुल कौन है, है?
तभी पता चले
इस्लामी इस्लामी में मिल जाए, ब्राह्मणों में इस्लामी भी तो हैं, ब्राह्मणों में बौद्ध भी तो हैं, सब धर्म के आत्मा हैं ब्राह्मणों में, नौकुरी के ब्राह्मण हैं तो नौ ही धर्म है दुनिया में, तो नौपुरी के जो ब्राह्मण हैं वो नौ धर्म वालों से मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं जाके, तब फिर जो भक्ति मार्ग में वो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो ज्योतिषी वगैरह हैं वो मानते हैं कि जब प्रलय होगी तो नौ ग्रह आपस में टकराएंगे, तो ये नौ धर्म आपस में टकराएंगे, जो पावरफुल होगा सो रह जाएगा, अभी तो कोई किसी को पावरफुल नहीं मानता, सब कहते हम पावरफुल हैं, है? सब पावरफुल मानते हैं, चोर चकार हैं चोर डकैते हैं वो भी अपने को पावरफुल मानते हैं, गुंडे हैं वो अपने को पावरफुल मानते हैं, लादेन अपने को पावरफुल मानता है, तो टक्कर हो तभी तो पता चले,
सारे झुकना शुरू हो जाएंगे बाप के आगे,
हैं?
सारे में बाप के आगे झुकना मानना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे,
कौन झुकना शुरू हो जाएंगे सारी दुनिया,
पहले बीके वाले,
बीके वाले पहले बीके वाले झुक जाए ना, झुकना शुरू हो जाएंगे, बाप प्रत्यक्ष होने लगेगा तो किसके सामने प्रत्यक्ष होगा, पहले पहले अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष, पहले बच्चे कौन है, आठ हैं तो आठ के सामने पहले प्रत्यक्ष होगा ना,
इक्कीस दिन बाद कुआ पूजन होता है, बच्चा पैदा होता है ना, हाँ। तो 21 दिन बाद कुआ पूजन होता है,
कुआ जो है कुएं का पानी ज्यादा शुद्ध होता है या पोखरों का तालाबों का नदियों का नहरों का नालों का पानी ज्यादा शुद्ध होता है,
कुएं का पानी ज्यादा शुद्ध होता है, क्यों कोई कारण होगा, कुएं का पानी खोद के निकाला जाता है तो ये नालेज भी खोद ही जाती है, क्या खुदाई होती है इसकी, इसे जितना जितना गहरे खोदेंगे उतना उतना शुद्ध जल बाहर आएगा, चलो सब संतुष्ट हैं, है? जिसका संग का रंग लेंगे वैसे ही बन जावेंगे। शिव बाबा को बुद्धि से ज्यादा संग का रंग लेंगे तो शिव बाबा जैसे बन जावेंगे। बाप आए ही हैं आप समान बनाने के लिए। बाप है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो बच्चे भी क्या बन जावेंगे, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बन जावेंगे। अच्छा, जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो बताते हैं कालहस्ती मंदिर को बंद नहीं किया जाता है, चाहे रात्रि में चंद्र ग्रहण लगता हो और चाहे दिन में सूर्य ग्रहण लगता हो। ऐसे ही जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो मंदिर को बंद नहीं किया जाता है, मंदिर को खुला रखते हैं। ये सूर्य कौन है और चंद्र कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? सूर्य है राम वाली आत्मा और चंद्र है कृष्ण वाली आत्मा, और दोनों ही आत्माएं शंकर का जो स्वरूप है उसमें प्रवेश होकर के पाठ बजाती है। उसमें सूर्य भी पाठ बजाता है राम, और कृष्ण वाली आत्मा भी पाठ बजाती है कृष्ण। लोग समझते हैं कि दोनों को विकारों का ग्रहण लगता है, राम वाली आत्मा को भी विकारों का ग्रहण लगता है, कृष्ण वाली आत्मा को भी विकारों का ग्रहण लगता है। तो जो विकारों का ग्रहण लगता है उसका तो राज समझा दिया कि जब सूर्य ग्रहण कहा जाता है तो एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा और दूसरी तरफ पृथ्वी, तो सूर्य का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वालों के ऊपर पड़ता है। तो पृथ्वी वाले जो चंद्रमा के परछाया में आ जाते हैं वो अंधेरे में आ जाते हैं, माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा की बातों से उनके जीवन से जो प्रभावित हो जाते हैं जो पृथ्वीवासी मनुष्य ब्राह्मणों की दुनिया में, वो चंद्र ग्रहण के अंदर आ गए, समझते हैं चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया। ऐसे ही वो सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया चंद्रमा की नहीं, ऐसे ही जब सूर्य ग्रहण लगता है, नहीं ये तो सूर्य ग्रहण की बात हुई, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा एक तरफ, बीच में पृथ्वी और एक तरफ सूर्य, तो सूर्य का परछाया पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है, तो पृथ्वी वालों को चंद्रमा अंधेरा दिखाई पड़ता है, समझा? तो जो चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा दिखाई पड़ता है तब पृथ्वी वाले कहते हैं चंद्रमा किस में आ गया, अंधेरे में आ गया, ग्रहण लग गया, अज्ञान अंधेरे में आ गया, माने विकारों का ग्रहण लग गया। ऐसे पृथ्वी वाले समझते हैं कि किसको ग्रहण लग गया, राम सूर्य को ग्रहण लग गया और कृष्ण चंद्रमा को ग्रहण लग गया। वास्तव में राम और कृष्ण को ग्रहण लगने की बात है ही नहीं। इस बात को समझाने के लिए, सारी दुनिया वालों को समझाने के लिए ये मंदिर खुले हुए हैं। क्या ग्रहण, वो समझते हैं ग्रहण लग रहा है। समझने वाले क्या समझते हैं कि राम और कृष्ण को विकारों का ग्रहण लग रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? राम और कृष्ण को विकारों का ग्रहण लग सकता है? राम कृष्ण में तो जो सदैव निर्विकारी परमात्मा परमपिता शिव है वो प्रवेश करता है, तो जिसमें निराकारी निर्विकारी निरहंकारी परमात्मा शिव प्रवेश करता है वो विकारी हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए ये मंदिर खोले गए हैं, ये महाकाल के मंदिर हैं। ये महाकाल जब महाकाल का रूप धारण करेगा उस समय दुनिया में विनाश हो रहा होगा कि नहीं है? जब अब महाकाल का रूप धारण करेगा, चारों तरफ काल ही काल मंडरा रहा होगा दुनिया में, उस समय इस मंदिर के दरवाजे खुले रहेंगे, आकर के देखो, समझो कि राम कृष्ण वाली आत्माओं को विकारों का ग्रहण लगता है या दुनिया वालों को लगता है? दुनिया वालों को लग सकता है। राम कृष्ण की आत्माएं संगम युग में विकारों के ग्रहण से वशीभूत नहीं होती है। और
मंदिर में कई को दो जीव देखा थे,
पक्ष मंदिर है यहाँ, एक मंदिर में बैठो दो दिखा। शंकर एक है कि दो हैं? शंकर एक है और उसमें दो बैल काम कर रहे हैं कि एक बैल काम कर रहा है? हैं? एक बैल काम कर रहा है। राम और कृष्ण की आत्माएं बैल का काम करती हैं या नहीं करती है? है? ऐसे दिखाया जाता है कि दो बैल हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी स्वतंत्रता संग्राम के बाद, तो कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, उसका चिन्ह बनाया गया था दो बैलों की जोड़ी। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो बैलों की जोड़ी काम कर रही है। ये दोनों बैल का पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो पार्ट बजाए रही हैं, एक शरीर के द्वारा बजाए रही है। तो शरीर एक है तो बैल भी एक है, लेकिन उसमें दो आत्माएं प्रवेश हैं, ये दिखाने के लिए दो सिर दिखा दिए गए। शिव को तो बैल नहीं कहेंगे, कहेंगे शिव को तो बैल नहीं कहेंगे, तीन आत्माएं हैं ना, दो पड़ी आंखें और एक खड़ी आंख। खड़ी आंख है सदा शिव, सदैव निराकारी स्टेज में खड़ा है, और दो पड़ी आंखें हैं वो है रामकृष्ण पुरुषार्थी, कभी खड़ी भी हो जाती है कभी पड़ जाती है। और
बाबा माता है बाबा के साथ चलती है, नहीं तो नीचे भी चलती है, लिख के देने के लिए बोलते बाबा का पॉइंट वास्ते भी वास्तव लिख सकते नहीं लिख सकते माता किससे लेते।
100-200 माताएं आएंगी तो तुम परंपरा शुरू कर दो लिख के देने की, तो लिख के दे पाओगे? है अभी तो दो चार माताएं आती हैं, वो कहती हैं हमें लिख करके दो, फिर जब ढेर की ढेर आवेंगी आगे चल के तो लिख के दे पाएंगे? इसलिए बताओ कि माँ बाप के बच्चे बने तो जो माँ की भाषा बाप की भाषा वो ही भाषा बच्चों की होनी चाहिए। अगर उनको बढ़ावा देते रहेंगे कि तेलुगु में ही लिखो और पढ़ो तो तेलुगु में ही लिखेंगे पढ़ेंगे या माँ बाप की भाषा सीखेंगे? माँ बाप की भाषा सीखेंगे तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करेंगे। बच्चे की भाषा मदर टंग होती है या दूसरों की भाषा सीखता है? है मदर टंग होती है।
भुवनेश्वर अंटे एवरु बाबा?
मुनि कहते हैं जो मन का उपयोग करते हैं, मन को यूज करते हैं, मन चलाते हैं, मन को ईश्वरीय कार्य में चलाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान में चलाते हैं, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में चलाते हैं, उनको कहा जाता है मुनि, मन को चलाने वाले। और उन मुनियों को जो चलाने वाला है उसको कहा जाता है मुनियों का ईश्वर, मुनीश्वर। जो ऋषि मुनि हैं उन मुनियों को भी, ऋषि मुनियों को भी तो चलाने वाला कोई होगा ना। तो शास्त्रों में टीवी में दिखाया जाता है कि शंकर जी को ऋषि मुनि देवताएं नहीं चलाते हैं, लेकिन शंकर जी ऋषि मुनि देवताओं को सबक को चलाते हैं। तो मुनीश्वर कौन हुआ? है जो ऋषियों मुनियों का ईश्वर है, शासन करता है, ऋषियों मुनियों के ऊपर भी शासन करने वाला। है
क्या बोल रहे?
कहा कह तो हो।
हाँ तीन बलिदान देते
हैं, तीन बलि देते हैं एक ही दिन में,
एक ही रोज तीन बलिदान देते
हैं। हाँ जब संपन्न स्टेज आती है ना, पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है, और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है।
तो इस संगम युग में
जो पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी है वो घड़ी भी आएगी कभी या नहीं आएगी? आएगी। जिस समय वो पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी आएगी, इस 100 वर्ष के संगम युग के बीच में, उस समय ये तीनों आत्माएं ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों साथ साथ अर्पण हो जाएंगे 100%। उसकी यादगार है। लंबा लंबा लिख करके देखते हैं। किसी ने लिख करके भेजा है, बाबा ने बोला है कि मैं वानप्रस्थ में प्रवेश करता हूं, तो यज्ञ के आदि में जब गीता माता में शिव ने प्रवेश किया तो क्या उनकी उम्र 60 साल थी? जब प्रवेश किया होगा तो गीता माता की उम्र 60 साल होगी या नहीं होगी? है? अरे हाँ या ना, ये तो कह रहे प्रश्न है, क्या उनकी उम्र 60 साल थी? ये प्रश्न क्या पैदा करना, ये बाबा की वाणी को काटना है या नहीं काटना है? बाबा तो कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं, वानप्रस्थ अवस्था 60 साल में होती है, और यज्ञ के आदमी ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर बैठते थे, शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे, उनमें उसमें नहीं, उनमें मम्मा बाबा में नहीं, जो मम्मा बाबा को पढ़ाने वाले थे उन बच्चों में प्रवेश करते थे। फिर उनके लिए बोला 10 साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी, तो कितने हुए? एक 10 साल से रहने वाला था कोई पुरुष, और एक ध्यान में जाती थी पुरुष हुआ स्त्री, स्त्री उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। तो शिव बाबा जिनमें प्रवेश करते थे वो वानप्रस्थ अवस्था वाले थे या कम अवस्था वाले थे? हैं? वानप्रस्थ अवस्था वाले ही होंगे। तो बाबा की वाणी में प्रश्न पैदा करना, मुरली में बोला है श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को तो रावण संप्रदाय समझो, ऐसी शंकाएं जो पैदा होती रहती हैं, ये रावण के सिर हैं। इन रावण के सिरों को महाकाली रक्त बीज के रूप में खप्पर में स्वाहा करती है, और राम वाली आत्मा क्या करती है? रावण के सिरों को काटती है। तो एक बात हुई, प्रश्न आया क्या उस माता की उम्र 60 साल थी? अगर 60 साल थी तो भागीदार से ज्यादा हुई, तो पत्नी की उम्र पति से ज्यादा कैसे हो सकती है? अच्छा 60 साल से उम्र अगर ज्यादा हो तो वानप्रस्थी नहीं कहा जाएगा? है? कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। मान लो भागीदार की उम्र 65 साल थी, क्या भागीदार की उम्र 65 साल थी या 61 साल थी? कभी कभी ऐसे भी होता है कि पति पत्नी बराबर होते हैं, एक ही साल में दोनों का जन्म होता है, होता है कि नहीं होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है पत्नी बड़ी होती है और पति उम्र में छोटा होता है। तो ये सब प्रश्न करना बेकार है। अगला प्रश्न है, द्वापर युग की एवरेज आयु कितनी है? सतयुग की एवरेज एज होती है 150 वर्ष, त्रेता की एवरेज होती है 125 वर्ष, और द्वापर की एवरेज एज होती है 60 साल, और कलयुग की एवरेज एज 30 साल और चल।